ओम शांति। जिनकी सेवा करते उनकी दुआएं मिल रही हैं और बाबा तो सवेरे से रात तक दुआएं देता ही है। बाबा के यज्ञ की प्यार से सेवा करना एक बहुत बड़ा ही भाग्य की बात है। जिन आत्माओं को यज्ञ सेवा का चांस मिलता है, भले कर्मणा सेवा हम सभी करते, लेकिन कर्मणा सेवा से भी अन्य आत्माएं कितनी खुश होती हैं, उनकी प्रसन्नता उनकी दुआएं सेवाधारियों को प्राप्त हो जाती हैं। सभी बाबा के घर में आते हैं, ज्ञान रत्नों से भी भरपूर होते हैं, अच्छे वायुमंडल से भी बहुत कुछ शक्ति मिलती है, शक्तिशाली वायुमंडल है। तो इस भूमि पर आते ही अनेक प्राप्तियों से संपन्न हो जाती हैं आत्माएं। और जिनको निरंतर चांस मिला है सेवा करने का, वो तो शक्तिशाली है ही, कमजोरी है क्या कोई? बाबा ने सर्व शक्तियों से, सर्व खजानों से, सर्व गुणों से, सर्व प्राप्तियों से अपने बच्चों को संपन्न बना दिया, भरपूर कर दिया, कोई कमी नहीं है। कोई कमी किसी के पास लगता है कि मेरे पास ये नहीं है? तो बाबा ने जब इतना सब कुछ दिया है और दे रहा है, तो बाबा के प्रति दिल में प्यार तो उमड़ता ही है ना। तो प्रभु प्यार दिल में रहे और जो आत्माएं संबंध संपर्क में आए उनके दिल में भी प्रभु प्यार जागृत हो जाए, इतना हम सभी बाबा के प्यार में समाये हुए रहें। और बाबा जो कह रहा है, बाबा की जो आशाएं हैं, बाबा जो हमें रोज शिक्षाएं दे रहा है, सिर्फ उन पर हम सभी अमृत वेले से रात तक चलते चले। बाबा की बहुत गुप्त दुआएं आशीर्वाद के रूप में, सकाश के रूप में, छत्र छाया के रूप में हम बच्चों को मिल रही हैं। अगर हम आज्ञाकारी हैं, श्रीमत पर चलते हैं, और बाबा की सबसे मूल श्रीमत कौन सी है? मूल श्रीमत कौन सी है? आज भी बाबा ने कहा, सबसे बड़ा ज्ञानी वो है जो आत्मा अभिमानी है। ये अभ्यास जिसने जितना कर लिया सवेरे से रात तक, वो नंबर वन चला जाएगा। क्योंकि देह अभिमान के कारण ही अनेक विकर्म, अनेक पाप कर्म हुए। और अभी बाबा हम बच्चों को इतना सरल रीति से सहज विधि बता रहे हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। जब भी मैं शब्द आए तो मैं कौन हूँ वो स्मृति में आ जाए, क्योंकि मैं ही रुकावट है फरिश्ते बनने में। मैं और मेरा, दो बातें रुकावट बताई ना बाबा ने इस बारी। तो जब मैं शब्द आए तो आत्मा की स्मृति आ जाए कि मैं एक आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? उसके बहुत से टाइटल्स हैं, चाहे जो टाइटल उसके आगे लगा लो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं बाबा की मस्तक मणि आत्मा हूँ, मैं नैनों की नूर आत्मा हूँ। बहुत से टाइटल्स आप आत्मा के आगे लगाते जाओ, क्योंकि जितने श्रेष्ठ सम्मान बाबा ने अपने बच्चों को दिए हैं, उन सब का अनुभव हमारे जीवन में होना चाहिए। रोज एक नया नया सम्मान लेकर उसी तख्त पर रहो। बाबा ने इस बार बहुत अच्छी बातें कही है कि माया अपोजिशन उनका करती है जो अपनी पोजिशन को छोड़ देते हैं। पोजिशन कौन सी है? अपने श्रेष्ठ सम्मान में रहना। जो संगम युग पर बाबा ने इतने श्रेष्ठ सम्मान दिए हैं, उस पोजीशन पर स्थित रहो रोज रोज, तो आप पोजीशन समाप्त हो जाएगी। न व्यक्तियों की आप पोजीशन रहेगी, न संस्कार अपोजिशन करेंगे न माया अपोजिशन करेगी। पोजिशन में हम रहे, नीचे ना आ जाएं, दूसरों को बदलने के चक्कर में खुद नीचे ना आ जाएं। कई बार शुभ भावनाएं रखते रखते सोचते तो बदलता ही नहीं है, ये तो सुधरता ही नहीं है, तो जैसा है वैसा ही है। तो बाबा ने क्या उसको टाइटल दिया, कौन सा दिया, पत्थर। अगर पत्थर ही है तो आप अपनी दृष्टि और वृत्ति को क्यों हलचल में ले आते हो, आपके अंदर क्यों हलचल आती है, आप नहीं बदलो कम से कम। वो बदले या न बदले, आपकी शुभ भावना अगर नहीं काम कर रही है तो भी बाबा ने कहा आप अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ो। तो सभी अपनी अपनी पोजीशन पर रहते हो, सुबह से लेकर के ये पोजीशन स्मृति में रहती है, मैं कौन हूँ स्मृति में रहता है पोजीशन। रोज सवेरे सवेरे बाबा कहता है तीन बिंदियों का तिलक लगा लो, मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा बिंदी, और तीसरा ड्रामा में मेरा जो पार्ट है जो बीतता वो बिंदी, या दूसरे का पार्ट देख करके भी पुलिस्टा बिंदी लगाओ। ज्यादा संकल्प विकल्प नहीं चलाओ, बाहर के संकल्प, कईयों को दूसरों को देखने की बहुत आदत पड़ गई है, वो क्या कर रहा है, वो कैसे चलता है, वो क्या खाता है, वो कैसे घूमता है, वो क्या पहनता है, वो कैसे रहता है, दूसरों को देखते हैं। अगर किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाए तो दूसरों को देखना शुरू कर देता है। जिसका मानसिक संतुलन ठीक है वो क्या करेगा, वो स्वयं को देखेगा। आत्म निरीक्षण करना माना मन उसका स्वस्थ है। अगर वो दूसरों को पर निरीक्षण करने लगे, फलाना ऐसा करता, वो ऐसे रहता, वो ये खाता, वो ऐसे पहनता, वो ऐसे सेवा करता, तो पर दर्शन हो जाएगा। बाबा जिसको कहता है पर निरीक्षण, दूसरों का दर्शन करने वाला, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। मानसिक संतुलन जिसका ठीक है उसकी तीन निशानियां बताओ। तो हम सभी अपने मानसिक संतुलन को देखते हैं, मन कितना संतुलित है, व्यवहार उसका कितना श्रेष्ठ है। तो मन अगर कंट्रोल में है, उस पर पूरा पहरा है, तो उसका व्यवहारिक जीवन, उसकी कर्म इंद्रियां उसके कंट्रोल में आ जाती हैं। और मन स्वस्थ है तो उसकी सबसे पहली निशानी दिखाई देगी, वो स्वयं को अच्छी तरह से देखेगा, दूसरे को नहीं। आत्मनिरीक्षण करेगा, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। और बाबा ने हम सबको यही काम दिया है, खुद को देखो दूसरों को नहीं। और आत्मनिरीक्षण में बहुत सी बातें बताई हैं, चेकिंग की, चेक करो, पोता में रखो। पोता में रखने वाले ज्ञान मार्ग में आगे जा सकते हैं, आगे नंबर ले सकते हैं। तो कैसे हम अपना अच्छे से अच्छा पोता मेल बनाएं, जिसमें खर्चे कम हो और बचत ज्यादा हो। जो हम सोचते हैं वो बहुत अधिक अगर सोच रहे हैं तो अधिक खर्चे हो रहे हैं, और अधिक सोचना, अधिक विचार चलाना मना मानसिक शक्तियों को नष्ट कर। इसलिए कोई भी बात अधिक संकल्प न चले, उस पर हमारा अपना नियंत्रण हो, कंट्रोल हो। तो मानसिक स्वास्थ्य की पहली निशानी है मन पर पूरा कंट्रोल और खुद को देखने वाला आत्मनिरीक्षण, अपने आप को देखता चले, दूसरे को न देखे। दूसरा जो कर रहा है वो अपना भाग्य बना रहा है, मैं उसको न देखूं। और दूसरी बात, उसके बोल जो है वो जितने आवश्यक है उतने निकलेंगे। जो अनावश्यक और अनर्गल बोलता रहता, जो आया बोल दिया, जब आया बोल दिया, तो उसके मानसिक स्वास्थ्य को हम क्या कहेंगे, अच्छा है। अगर उसका बोल पर अपना कंट्रोल नहीं है, जब चाहिए बोल देता है, किसी को भी दुख दे देता है, किसी का भी अपमान कर देता है, किसी की भी इंसल्ट कर देता है, तो उसको क्या कहेंगे, इसका मानसिक संतुलन ठीक है। लेकिन जिनका मानसिक संतुलन ठीक है उनका वाणी पर अपना पूर्ण कंट्रोल रहता है, मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, आवश्यक बोल कौन कौन से हैं, कितने बोलने चाहिए, मानसिक संतुलन रखने वाली आत्मा बोल पर बहुत कंट्रोल रखती है। क्योंकि मन का दर्पण बोल और कर्म है। जैसे मन के अंदर बातें चलती हैं, कोई कहे मेरी मनसा बहुत शक्तिशाली है, बहुत एकाग्र है, बहुत अच्छा मैं योगी हूँ, और बहुत बोलता हो, एकाग्र हो सकता है वो। व्यर्थ बोलता हो, व्यर्थ करता हो, अगर कर्म व्यवहारिक जीवन में संबंध संपर्क में शुद्धता नहीं है, स्नेह नहीं है, नम्रता नहीं है, अपनी ही बड़ाई करता जाता है, तो उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी? हम सब विचार कर सकते हैं कि अगर मानसिक स्थिति अच्छी है, मन पर उसका नियंत्रण है, तो बोल और कर्म उसके स्वतः अच्छे होंगे, उसकी निशानी ये दिखाई देगी। अगर बोल और कर्म हमारे कंट्रोल में नहीं है तो माना हमारी मनसा ठीक नहीं है। मन के अंदर हमारी इतनी कंट्रोलिंग पावर नहीं है, इतनी शुद्धता नहीं आई है, इतना पॉजिटिविटी नहीं है, इतने हम अच्छे संकल्पों में रमा नहीं करते, इसलिए जो आया वो बोल देते, जब आया वो बोल देते। तो मानसिक संतुलन की दूसरी निशानी है बोल पर अपना कंट्रोल, और तीसरी निशानी भोजन पर बहुत कंट्रोल। ऐसे नहीं जो आया जब आया खा लिया, जो देखा इसकी थाली में क्या है और मेरी भी बुद्धि चल गई। बहुत अधिक योगी लोग ध्यान रखते हैं भोजन के ऊपर, भोजन पर किसी की दृष्टि भी न पड़े, और किसी के देख करके वो ये खा रहा है मैं भी खाऊं, जबान में पानी ना आ जाए, लालच ना आ जाए, क्योंकि बहुत कंट्रोल योगी को चाहिए। इसलिए बहुत कम भोजन है, सीमा युक्त है, यथार्थ है, योग युक्त भोजन है, क्योंकि भोजन का प्रभाव मन को असंतुलित बना देता है। तो अगर इधर उधर का भोजन कर लिया, इसलिए बाबा ने भोजन की बहुत परहेज बताई है, कोई भी ऐसा वैसा भोजन नहीं कर सकते, किसी के हाथ का भी ऐसे नहीं खा सकते, योग युक्त बना हुआ भोजन चाहिए। तो कितनी बड़ी जवाबदारी है आप सबकी, महसूस करते हो भंडारे में सेवा करते हुए कि हम माताओं की, हम भाइयों की, जिनको सेवा का ये चांस मिला है, इतनी योगी आत्माओं की मन की स्थिरता का आधार आपके बनाए हुए भोजन पर है। अगर आप उतनी शुद्धता से, उतनी पवित्रता से, अच्छे विचारों में रमण करते हुए भोजन नहीं बना रहे हो, तो जिनके पेट में भोजन जाएगा उन सब का बोझ किस पर चढ़ेगा? और सेवाधारी की निशानियां बाबा ने इस बारी क्या क्या बताई है याद है? इस बारी बाबा ने बहुत सी निशानियां सेवाधारी की बताई। जो सच्चे सेवाधारी हैं, उनकी सबसे पहली निशानी है हल्कापन, खुशी, सुख देने की सेवा, माना सुख मिले, सुख दे, तो खुशी में रहना, सुख देना, हल्का रहना, हल्का बनाना, ये हमारी सेवा है। कोई भी सेवा हम करें, अगर वो भारी बना दे मन को, तन को थका दे, तो उसको सेवा नहीं कहा जाता है। उसमें खुशी की अनुभूति हो, कितनी भी सेवा हो, सेवा करते जाओ और खुश नुमा बनते जाओ, अंदर अंदर दुआओं का बल आत्मा को शक्तिशाली बना दे, खुशी में नचा दे, खुद भी हल्के रहे और दूसरे को भी हल्का बना दे, सेवाधारी की निशानियां हैं। तो हम सभी सेवाधारी जिस सेवा के भी निमित्त हैं, अगर उसमें अच्छे वाइब्रेशन हल्केपन के हैं, बहुत हल्के होकर के, लाइट होकर के, बाबा के यज्ञ की सेवा बहुत बड़ी सेवा समझ करके कर रहे हैं, बोझ नहीं। कई आत्माएं सेवा करती बहुत खुशी खुशी से करती, बहुत अच्छा लगता है कि मैं भी करूं, मैं भी करूं। कई समझते हैं क्या है ये, तो सब कर सकते हैं, मेरे को ही क्यों कहा जाता है, मैं ही करूं क्या, मैंने तो इतना सारा दिन में कर लिया, गिनती करते रहते हैं। और कई बहुत प्यार से जो मिल गया कर लिया, निश्चिंत होकर के, हल्के होकर के कर लिया और उसकी दुआएं जमा कर ली। तो इसलिए सबसे बड़ा ध्यान हम सबको रखना है कि हम भोजन को बहुत शुद्ध रीति से बाबा को स्वीकार करके खाएं, और जो बना रहे हैं उसमें भी अच्छे शुद्ध वाइब्रेशन भर दें। तो ये मानसिक संतुलन हमारा बिगड़ जो रहा है, जिससे योग नहीं लगता, बुद्धि भटक जाती है, वो ठीक हो जाएगा। तो ये तीनों निशानियां आपने चेक करना, अगर मन स्वस्थ है तो योग फौरन लगना चाहिए, अगर मन स्वस्थ नहीं है तो योग लगेगा नहीं, कितना भी आप योग लगाने की मेहनत करो। कई लोग एक एक घंटा बैठ जाते आकर के, इन पूछो आपके मन की एकाग्रता कितना समय थी, कितना समय आप बाबा की याद में थे, कहाँ थे, तो मन भटकता रहता है इधर से उधर, कहाँ कहाँ नचाता है, डांस कराता रहता है, कभी किधर कभी किधर कभी किधर। उस पर पूर्ण कंट्रोल हो, जहाँ हम चाहें वहीं स्थिर हो जाए, एकाग्र हो जाए, उसके लिए कुछ एक बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। बस सारे दिन में कुछ बातें, जैसे ड्रिल बीच बीच में हम करते हैं, तो बाबा ने इस बारी ड्रिल भी बहुत अच्छी अच्छी सिखाई है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, कैसे हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण जीवन की पहली निशानी हमारे में आई है, जिनको बाबा ने ब्राह्मण कहा है कि ब्राह्मण है जो संपूर्ण पवित्र है, स्वच्छ है, जिनकी रॉयल्टी रियल्टी पर्सनैलिटी प्योरिटी है, जिनके द्वारा संतुष्टता की प्राप्ति होती है, जो संतुष्ट रहते हैं, सबको संतुष्ट करते हैं, जो खुद निमित्त समझ करके कार्य करते हैं और निर्माण चित रहते हैं, वही ब्राह्मण है। तो बाबा ने हम सबको संपूर्ण पक्के पहले ब्राह्मण बनने के लिए कहा, इशारा दिया, क्योंकि ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेंगे, फरिश्ता सो देवता बनेंगे। तो ये ड्रिल बाबा ने हम सबको सिखाई है। तो सभी अपने आप से पूछें, पहले हम पक्के ब्राह्मण बने हैं, मन वचन कर्म संकल्प सब बिल्कुल शुद्ध पवित्र है, जरा भी कहीं पर भी किसी में भी बुद्धि लटकी और अटकी हुई तो नहीं है, कहीं कहीं फंसी रहती है, कोई व्यक्ति आकर्षण करता है, कोई वस्तुएं आकर्षण करती हैं, कहीं न कहीं पर प्रभाव में बुद्धि आ जाती है। और किसी भी देहधारी की प्रभाव में बुद्धि आई, क्या होगा, योग लगेगा। कहीं पर भी कोई प्रकार से कोई भी एक विकार का अटैक हो जाता है तो बुद्धि उसमें अटक जाती है, अटैक हुआ और अटकी। माया तो अटैक करती है ना, बार बार कहीं ना कहीं से अटैक करने की कोशिश करती है, और वो अटैक करेगी बुद्धि अटक जाएगी। इसलिए हम सबको क्या ध्यान रखना है, कोई भी प्रकार से इतना अच्छा पहरा हो बुद्धि पर कि माया कहीं से भी संकल्प में भी अटैक न करे। इसके लिए क्या करना होगा, बुद्धि को ज्ञान में जितना हो सके, मनन में चिंतन में शुद्ध विचारों में रमण करने की आदत डालो। व्यर्थ से बचने का तरीका है बुद्धि को व्यस्त कर देना। अगर व्यस्त नहीं है तो व्यर्थ है। जैसे बाबा ने कहा, जब क्यों क्या कैसे उठता है तो व्यर्थ का दरवाजा खुल जाता है। किसी भी बात में अगर उठ गया, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा भी होता है क्या, तो क्यों क्या कैसे कहा और व्यर्थ का दरवाजा खुल गया, व्यर्थ संकल्प चलने लगे, फिर उसको ब्रेक देना मेहनत का काम है, बहुत मेहनत लगती है फिर। इसलिए ध्यान रखना है कि व्यर्थ आए और उसको उसी समय दरवाजे के अंदर ना आने दो, अंदर अंदर समाप्त करके और फिर से अपने मंजिल की ओर। बाबा ने मुझे क्या लक्ष्य दिया है, अच्छे संकल्पों में रमण करने की आदत डाल लो, ज्ञान चिंतन करके पॉजिटिव विचारों में ला करके खुशी के संकल्प करके ब्राह्मण जीवन की प्राप्तियों को स्मृति में ला करके। बहुत सी प्राप्तियां हुई हैं इस जीवन में, कम से कम उनको एक बार हम अपने जीवन में ध्यान पर तो लाएं, क्या क्या बाबा ने मुझे प्राप्तियां कराई हैं, अमृत वेले से रात्रि तक की लिस्ट प्राप्तियों की हरेक के पास अपनी अपनी होनी चाहिए। रोज सोचो विचार करो कि बाबा ने मुझे कितनी प्राप्तियां कराई हैं, कैसी श्रेष्ठ जीवन बनाई है, और उस जीवन के श्रृंगार के लिए बाबा कैसे कैसे रोज दिव्य गुणों से हम बच्चों को सजा रहा है। दिव्य गुणों की एक मूर्ति बन जाएं बच्चे, उनके नयनों से स्नेह दिखाई दे, उनकी दृष्टि से स्नेह दिखाई दे, उनके चेहरे से भी दिखाई दे। आज भी बाबा ने वरदान में कितना अच्छा कहा, बच्चे सिर्फ ज्ञान सुनाना सेवा नहीं है, विशेषताओं से सेवा करो, स्नेही बना दो, उनको स्नेह की अनुभूति करा दो, आपके चलन से आपके चेहरे से बाबा का चित्र और बाबा का चरित्र दिखाई देने लगे। कितना सुंदर बाबा की शिक्षाएं देने का स्वरूप है, अगर हम उसको चिंतन में ले आते हैं, मनन करते हैं, उस पर विचार करते हैं कि कैसे हमारे चरित्र में हमारे चेहरे पर बाबा के गुण आ जाएं, बाबा की विशेषताएं आ जाएं, बाबा ही दिखाई देने लगे, इतनी आत्मा बाबा के समान बनती जाए। तो बाबा ने फरिश्ते बनने में दो रुकावटें कौन सी बताई, मैं और मेरा, और दो शब्द बताए जिनसे फरिश्ता स्थिति सहज बन सकती है। अंडरलाइन कराई, निमित्त और निर्माण। अंडरलाइन कराया ना बाबा ने, कहा अंडरलाइन करो दो शब्द कि मैं निमित्त हूं। निमित्त समझते ही निर्माण बन जाओ, क्योंकि मैं पन रहा ही नहीं, मैं करता हूं। जिनको जरा भी आ जाता है बुद्धि का भी मैंपन है, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत होशियार हूं, मैंने बहुत अच्छी सेवाएं की हैं, मेरी बहुत अच्छी प्लानिंग बुद्धि है, जहां पर भी ये मैंपन आ गया वहां पर थोड़ा सा सूक्ष्म अहंकार अभिमान आ जाता है, जो बोल में भी कभी कभी किसी किसी के चेहरे पर भी रोब दिखाई देता है, रुहाब नहीं दिखाई देता, रूहानियत नहीं दिखाई देती, लेकिन लगता बड़ा नशा है इसको, उल्टा नशा, रोब वाला बोलेगा अभी तो ऐसे लगेगा पता नहीं काट लिया जैसे। ऐसे बोल भी कई बार निकल जाएंगे जो उसके संपर्क संबंध में भी आत्माएं आना नहीं चाहती, उनसे किनारा कह करके रहती है, पता नहीं क्या बोल देगा, पता नहीं क्या कह देगा, तो डर लगता है जैसे उस आत्मा से। लेकिन जो नम्रचित आत्माएं होती हैं, उनके सब समीप आना चाहते हैं, उनसे सब दृष्टि लेना चाहते हैं, उनसे खुशी की, उनके संपर्क से भी खुशी की अनुभूति होती। और जो जरा भी अहंकारी आत्माएं, अहम वाली आत्माएं हैं, जिनके चलने फिरने बोलने बात करने से भी रोब दिखाई देता है, चेहरे पर भी दिखाई देता है, पता नहीं इसको क्या नशा है। थोड़ा भी कोई करता है ना, कोई होशियार होता है, कोई बहुत मान सान मिल जाता है, कोई बहुत अच्छी पोस्ट पोजीशन होती है, तो उसके चेहरे से रोब दिखाई देता है। बाबा कहता जो नम्रचित आत्माएं हैं वो बहुत निर्माण चित्त है, बहुत झुकना सीखती जानती हैं, झुक करके चलती हैं, बहुत उनके अंदर बोल में बहुत सरलता आ जाती है। जैसे हम दादियों को देखते हैं कितने हल्के रीति से, सरल चित्त, चित्त ही सरल हो गया, वाणी ही सरल हो गई, दृष्टि ही सरल हो गई, सबको सुख दे रही है, धारणा क्या हुई, नम्रता की, उन्होंने अपना लिया, उनके अंदर है ही नहीं कि मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं मैं करती, बाबा कर लिया, करण करावन हार बाबा है, निमित्त बना दिया है, बस पीछे से वो सब कुछ करा रहा है। इतनी नम्रता आ गई, झुकना आ गया, मान मिलने लगा, मांगा नहीं किसी से, मांगते थोड़ी है, लेकिन नम्रचित है, उनके नयन बोल सब दिखा रहे हैं, बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत नम्रता है अंदर से, बहुत प्यार जिगार्ड है उसके अंदर, बहुत सारी विशेषताएं एक गुण को धारण करने से आ जाती, जैसे कहते हैं ना एक विकार से सब विकारों की उत्पत्ति हो जाती है, अगर एक विकार का बीज अंदर रह गया तो किसी समय भी कोई भी विकार उत्पन्न हो सकता है। बाबा ने कल कल की मुरली में कहा देहाभिमान सबसे पहला नंबर है, उसी से काम विकार उत्पन्न हुआ, फिर क्रोध आ जाएगा, काम की पूर्ति नहीं होगी, मोह आ जाएगा, फिर लोभ आ जाएगा, फिर अहंकार आ जाएगा, तो कहीं न कहीं से कोई न कोई विकार, एक विकार के होते ही उसका बीज है तो संग का पानी मिलते ही उसमें फल निकलने लगे, फूल निकलने लगेंगे, प्रवेश हो जाएंगे विकार। ऐसे ही एक गुण की धारणा से, जैसे नम्रता का गुण अगर आपने धारण कर लिया, लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं करती, मुझे क्या है, बाबा बैठा है, बाबा करा रहा है, किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं है, तो आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत अंदर से संतुष्टता है, प्रसन्नता है, आपके जीवन से लगेगा बहुत हर्षित आत्मा है, बहुत खुशनुमा आत्मा है, चेहरे से लगेगा बहुत मुस्कुराती हुई है, प्रसन्न है। और जिसके अंदर थोड़ा सा भी अहंकार होगा उसके चेहरा सीरियस हो जाएगा, गंभीर हो जाएगा। बाबा ने तो बहुत अच्छे से मिसाल दी है ना, गैस का गुब्बारा बन गया, टाइटल याद रखना, कभी भी सीरियस चेहरा हो जाए तो बाबा ने कहा याद रखना अपना टाइटल, दूसरे को कहना नहीं, लेकिन याद रखना ये गैस का गुब्बारा है, माना व्यर्थ का गैस अंदर भर गया है, अंदर अंदर चलता रहेगा, सीरियस दिखाई देगा, बोलेगा नहीं, बात नहीं करेगा किसी से, ऐसे लगेगा पता नहीं क्या हो गया, खुशी गायब। तो बाबा हम बच्चों को कितनी ऊंची ऊंची शिक्षाएं दे करके अपने समान बनाना चाहता है, और उनको हम अगर जो थोड़ा सा स्मृति में ले आए, रिवाइज करते रहे बीच बीच में, कभी कभी क्या होता है कि हम सुन लेते हैं लेकिन विस्मृति हो जाती है, स्मृति में नहीं रहती बातें, बीच बीच में ध्यान रहे, इसको रिवाइज करें, किसी को सुनाओ, कभी आपस में 5-10 मिल गए उनसे आपस में रू रिहान करो, कभी लिखा हुआ हो पढ़ लो, कभी उसकी पॉइंट्स हिंट्स के रूप में हो उनको रिवाइज कर लो, तो एक स्मृति में बाबा की बातें बनी रहती हैं। अभी 2 मुरलियां चल चुकी हैं, दोनों मुरलियों को अच्छी तरह से रिवाइज करो बार बार, जब समय मिलता है। कॉपी मिल गई है सबको, कितनी बार रिवाइज किया कॉपी लेने के बाद, किया है कि टाइम नहीं मिलता है? मिलता है तो होगा कि नहीं मिलता है? माताओं को मिलता है, भाइयों को मिलता है टाइम, करते हो रिवाइज मुरली कि नहीं? मिला, कोई बोलते नहीं हो क्यों? किया है आप लोगों ने? नहीं किया? जब भी समय मिले तो ऐसा करो, पूरी मुरली मान लो 8 पेज की है, इतनी बड़ी मुरली है, आपको पूरा टाइम नहीं है, तो उसकी हाइलाइट्स कम से कम एक बार उसको अंडरलाइन करो। अंडरलाइन किया होगा, अगर 10 बातें भी अंडरलाइन आपकी की हुई हैं, तो फौरन आपको याद आ जाएगा कि ये बाबा ने कहा। देखो हमने बताया आपको, रिवाइज किया, पहले 3 बातों की ड्रिल कराई, फिर VIPs की चेकिंग बताई, फिर 2 बातें रुकावट बताई, फिर 2 बातें 2 शब्द बताए जिसे फरिश्ता बन सकते हो। बहुत सरल रीति से बाबा वर्णन करते हैं, कुछ बातों को केवल 4-5 बातें ऐसी अगर नोट हो तो सारी मुरली आपका पूरा ही रिवाइज हो जाएगी, ध्यान पर आ जाएगी। और मुरली अगर ध्यान पर है, स्मृति में बार बार आती है, तो मैं कहता हूँ स्मृति में आएगी तो स्वरूप में भी आ जाएगी, अपने आप को लगेगा। जैसे बाबा कहता ब्राह्मण सो फरिश्ता है, फरिश्ता किसको कहा? जिसका कोई से नाता नहीं है, कोई पुराने संस्कार नहीं है, पुराना स्वभाव नहीं है, जो सबका प्यारा है, हर्षित है, नम्रचित है, जो सेवाधारी है। मैं बहुत सारी बातें आप फरिश्ता याद करते ही फरिश्ता स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करने लगेंगे। ऐसे नहीं फरिश्ता स्वरूप लेकर के सामने बैठो, लेकिन फरिश्ता माना हम देखते रहें, अंदर से चेक करते रहें कि कहां कहां हमारे अभी तक लगाव की रस्सियां हैं, बुद्धि कहां जाती है। जब मुझे ये बनना है, मेरा लक्ष्य हमारे सामने है, तो कम से कम हम उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं या अभी भी नए नए हिसाब किताब बना रहे हैं? कहीं है पुरानों को खत्म करने के लिए योग कर रहे हैं, योग करते हैं पुराने खत्म हो जाएं, और फिर कहीं ना कहीं जोड़ लेते हैं, किसी न किसी के प्रभाव में आ जाते हैं, किसी के झुकाव में आ जाते हैं, कोई अच्छा लगने लगता है, किसी से लगाव हो जाता है, किसी से चीजों की लेन देन शुरू हो जाती, कोई कुछ किसी को देगा, कोई कुछ किसी को देगा, जहां संबंध नहीं होंगे वहां पर भी खिंचाव होना शुरू हो जाएगा। तो एक तरफ चुकतू कर रहे हैं योग द्वारा, और दूसरी तरफ बना रहे हैं। फरिश्ता कैसे बनेंगे? डंडा खा करके बनेंगे, सजाएं खा करके बने, बनाएगा तो सबको बाबा। और बाबा कहते तुम देखो ही ऐसा सबको फरिश्ते हैं, भले वो कैसा भी कोई हो, क्योंकि वायुमंडल बाबा को भी ऐसा बनाना है। वायुमंडल से नेगेटिविटी समाप्त करने के लिए कोई कुछ भी कर रहा हो तो भी बाबा कहता तुम फरिश्ता देखो उसको, तुम उसको उस नजर से नहीं देखो ये ऐसा करता है। लेकिन जानते हैं कि ऐसा अगर कोई हिसाब किताब बना रहा है तो वो बहुत कड़ा हिसाब किताब है, क्योंकि चुकतू करने के समय नया बना लेना मना कहीं न कहीं आकर्षण में फंसे रहना, बुद्धि लटकी रहेगी, बाबा से योग नहीं लगेगा। इसलिए हम सभी अपने रिश्तों को, अपने संबंधों को, अपनी बुद्धि की आकर्षण को चेक करते रहे कि कहाँ कहाँ ये बुद्धि जाती है, क्यों जाती है, क्या चाहिए इसको, तो अपने आप देखेंगे आप सब रस्सियां टूटती जाएंगी। सूक्ष्म रस्सियां हैं, ऊपर ऊपर से कई बार हम तोड़ लेते हैं, भाई नहीं हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन सूक्ष्म अगर लगाव की रस्सी है तो वो उड़ने नहीं देगी, फरिश्ता बनने नहीं देगी, सेवा करने नहीं देगी। इसलिए बहुत महीनता से सूक्ष्म चेकिंग करके और अपने लगाव की रस्सियों को काटना है, बहुत हल्के बन जाना है, जिससे सहज रीति से उड़ सके हम। सेवा करने के लिए भी हल्कापन चाहिए, जैसे आप भी बाबा का संपूर्ण स्वरूप कितनी सेवाएं कर रहा है, देश विदेश में जो साकार में सेवाएं नहीं हुई, आज 90 देशों में जो बाबा के बच्चे पहले हैं निकले हैं, उनको बाबा वहां बैठे भी अनुभव करा रहा है, इतनी दूर होते हुए भी देश विदेश में कहां कहां कोने कोने में गांव गांव में बच्चे हैं। अभी मैं 2-3 दिन पहले गांव में गया था, क्या विशेषता आपको सुनाऊं। मेरे को बोला रात को एक क्लास करा के आना, गुजरात के यही गांव में मैं बाजू में गया था, तो वहां पर रात को 9:30 बजे के बाद तो क्लास शुरू होती है। हमने कहा रात को 9 बजे के बाद क्लास शुरू करते हो, दिन में नहीं होती? बोला दिन में मूंगफली इस समय निकल रही है, सब बिजी होते हैं और सबके खेत बहुत बड़े बड़े हैं मूंगफली के। उस क्लास की विशेषता आपको बताता हूँ, 2 साल के अंदर 500 स्टूडेंट बने। 2 साल में 35 गीता पाठशालाएं खोल करके और 500 स्टूडेंट निकाले हैं। एक गीता पाठशाला का वार्षिक उत्सव था, मकान छोटा था इसलिए उन्होंने मंदिर में रखा था, 3-4 गांव के लोग इकट्ठे हुए थे, 150-200। मैं वहां गया था क्लास कराने, रात को 9:30 बजे क्लास शुरू हुआ, 11 बजे पूरा हुआ, 11 बजे वहां से निकला, 1 बजे शांति बनाया। लेकिन इतनी लगन, इतनी भावना, इतना प्यार बाबा का के प्रति कि नए नए बच्चे हैं, कैसे धारणा कर रहे हैं, कैसे बाबा में विश्वास है, सारा दिन काम करते हैं और रात को बैठ करके मुरली सुनते हैं, क्लास करते हैं, आपस में मिलते हैं, घर ही मंदिर बन गया। मेरे को 2-3 घरों में ले गए रात को ही, मेरे घर में चक्कर लगाओ, मेरे घर में चक्कर लगाओ, चरण घुमाओ। तो जब मैं जाता था देखता था मंदिर बन गए घर। हमने कहा ये मंदिर तो बन गए, आप मूर्तियां सज गई हो, मंदिर बन गए, घर को मंदिर बना दिया, बाबा को बिठा दिया, बाबा का पाठ चलने लगा, गीता का पाठ चलने लगा, लेकिन रहने वाली मूर्तियां चैतन्य मूर्तियां साक्षात्कार कराने वाली हैं। कोई भी प्रकार का व्यसन, कोई भी प्रकार की ऐसी खान पान, कोई भी ऐसा बोल चाल, कोई भी ऐसा रहन सहन, कोई भी साधारणता न हो, मूर्ति माना दिव्यता हो, स्वच्छता हो, पवित्रता हो, रूहानियत हो, तब तो मूर्ति कहेगा। तो हर घर मंदिर बना रहा है बाबा, और बहुत सारे ऐसे घर बाबा के मंदिर बन रहे हैं जहाँ चैतन्य मूर्तियां बाबा का साक्षात्कार कराएं। तो हम देख रहे थे कि कैसे गांव-गांव के अंदर, एक छोटे छोटे गांव में, बहुत अंदर गांव में हमको ले गए रात को ही, हम कहाँ छोटे छोटे गांव में जा रहे थे, देख रहे थे सब कैसे अपने भाई बहन, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है जहाँ जाओ। तो बाबा की सेवाएं तो दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, ऐसे ही बाबा की प्रत्यक्षता होनी है, क्योंकि बाबा ने इस बार बहुत अच्छा अंडरलाइन करा दिया, सबके ध्यान पर आया होगा कि राजधानी कोई वीआईपी सेवा से नहीं बनेगी। क्या कहा बाबा ने, स्टूडेंट की पालना करो, उनमें रुचि पैदा करो, उनका उमंग बढ़ाओ, उनको उत्साह में लाओ, उनसे सेवा कराओ, राजधानी के आपके मेंबर्स हैं, सिर्फ वीआईपी के पीछे लग गए, थक गए और स्टूडेंट जहां है वहीं से खड़े हैं, फायदा क्या हुआ, उनको भी आयु मिले, आगे बढ़े वो। तो बाबा ने ध्यान खिंचवाया इस बारी, तो सबकी पालना करनी है, तो हमारी तो बाबा पालना कर रहा है ना, डायरेक्ट पालना हम से भी ले रहे हैं, तो पालना जिनको मिलती है वो कितने शक्तिशाली होते हैं, उनके अंदर कैसे उमंग हो, उत्साह हो, शक्ति हो, हिम्मत हो, और उनके संग से, उनके संबंध से, उनके संपर्क से आत्माओं में शक्ति आ जाए। तो जितनी कमजोरी है, बाबा ने कहा एक एक कमजोरी को समाप्त करने की मेहनत करो, अपनी कमजोरी तो समाप्त हो लेकिन हमारे कोई भी साथी सहयोगी हैं उनकी भी कमजोरियां समाप्त हो जाए। तो ऐसा शक्तिशाली बनना है, ऐसी अपनी श्रेष्ठ मनसा बनानी है, न किसी व्यर्थ को देखना है, न व्यर्थ को सोचना है, न व्यर्थ बोलना है, न व्यर्थ खाना है, ठीक है। अगर हमारा इस पर कंट्रोल आ गया तो हमारा मानसिक संतुलन ठीक हो जाएगा और मन हमारा बाबा में टिक गया तो बहुत सारी एकाग्रता की शक्तियां प्राप्त और वो शक्तियां सेवा में काम करेंगी। ओम शांति।
निर्मल हो जीवन अपना, हो संकल्प विमल, निर्मल हो जीवन अपना, हो संकल्प विमल, खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल, खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल, आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर दे।